आजच्या प्रातः क्लास
पंखा बंद कर दिया
चौबीस आठ पैंसठ का रिकॉर्ड चला है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? कहेंगे ज्ञान सागर के कंठे पर आए हुए हैं। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर और अभी आए हुए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर, और आए कौन हैं? ज्ञान गंगाएं क्या बनने के लिए आए हैं? कौड़ी से हीरा और कंगाल से सरताज बनने के लिए आए हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मा बच्चा तो है ना? कहेंगे ब्रह्मा बल शिव, तुम हो पोत्रे पोत्रियां। कलकत्ता में कहेंगे सागर और नदियों का बड़ा भारी मेला, वहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा और भी नदियां मिलती हैं, मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। इनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। और ये नाम अंग्रेजों ने रखा है, परंतु नाम रखने वाले कुछ भी अर्थ नहीं समझते हैं। ये डायमंड हार्बर नाम क्यों रखा हुआ है? ऐसे ही नाम रख दिया है। अभी बाप अर्थ समझाते हैं। ये ज्ञान के रत्नों का हार्बर है, हीरों का हार्बर है। हीरे जैसी आत्माएं इकट्ठी होती है ना, तो बाप अर्थ समझाते हैं। तुम इस समय आए हो ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख। तो उसका यादगार मनाते हैं। नाम रख दिया है डायमंड हार्बर। तो वहां भी सागर के सन्मुख जाते हैं हीरा बनने के लिए, परंतु भक्ति मार्ग में तो हीरा बनने के बदले और ही पत्थर बन जाते हैं। क्योंकि वो है पत्थर बनने का भक्ति मार्ग, वो संगम झूठा कहेंगे अथवा उनको मैटेरियल संगम कहेंगे। मैटेरियल तो जड़ होता है ना, और तुम तो चैतन्य ही रे। ये संगम है हीरे जैसी आत्माओं और परमपिता परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वो भक्ति मार्ग में जड़ गाया जाता है और ये है चैतन्य। तो चैतन्य होने के कारण यहाँ ये कहाँ भी जा सकते हैं। तो ये जैसे कि हो गया हीरे जैसा बनने का संगम, कहेंगे हीरे जैसा बनो अर्थात ज्ञान की चमक मारते रहो। ये है ब्रह्मपुत्रा और एडाप्टेड ज्ञान गंगाएं। वो नदियां तो अनगिनत हैं, सबको मालूम है भारत में इतनी नदियां होती हैं। और ये तो अनगिनत हैं। इन ज्ञान गंगाओं का अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। जड़ सागर की बात नहीं है, जड़ नदियों की बात नहीं है। तो पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर इन द्वारा छोटी मोटी नदियां निकलती हैं। तुम जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़ी नदी है कोई छोटी नदी है। ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाती है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ सूर्यवंशी महाराजा महारानी हीरे जैसा बनते हैं। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो सर के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है और ये सागर के साथ इकट्ठी रहती है। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में ये जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। ये बाप ही ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चले ये भी जानते हो जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ करना है। काय बात में जीना है, देह अभिमान में जहाँ तक जिएंगे पुरुषार्थ करना पड़े। शिक्षा मिलती रहती है, इंसान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी और दूसरी तरफ विनाश शुरू हो जाएगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है, इतना हाहाकार हो जाता है जो बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले तैयार होना है। जानते हो ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा की लाइफ 100 साल दिखाते हैं, तो समझना चाहिए कि बाकी कितना समय होगा। और ये जानते हैं जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई होनी है। फिर तुम पावन बनते रहते हो, वो है पतित। जब सभी पतित खलास हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएं, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय है पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। कहेंगे पावन बननी है, जब विनाश होगा तब पावन बनेगी। तुम पहले ही पावन बनते हो, तो उनको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तो नई दुनिया का संबंध शुरू होता है। जब तक नया संबत शुरू हो तब तक पुराना संबत जरूर कायम रहेगा। तो यहाँ से संबत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भले नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नई है। अभी तो है संगम, कलयुग पूरा हो सतयुग आना है। हम तो रहते ही है फर्स्ट प्रिंसेस प्रिंसेस के साथ, राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक कि लक्ष्मी नारायण तख्त पर न बैठे। उस समय कुछ न कुछ खिटपिट चलती है। बल कृष्ण आ जाते हैं तो देखो ये सब विचार सागर मंथन की बातें हैं। सतयुग कब शुरू होगा? कहेंगे सूर्यवंशी डायनेस्टी का संबत फलन। प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर कब संबत नहीं होता है? बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। 24-8-65 की वाणी का दूसरा पेज। तो छी छी को भी जाना है क्योंकि कुछ न कुछ तो बचे हुए रहते हैं ना। जो बचे हुए हैं वो भी वापस आ जाते हैं। उनको टाइम लगता है परंतु ये बातें कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, तो दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता रहता है और ये कुंभ का मेला, सागर और नदियों का मेला जैसा तैसा है 40-50 वर्ष चलता है। तो तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता या ज्ञान सागर बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़े सिदक से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। परंतु वो तो है जड़ यात्रा। यात्रु अपना कल्याण करना चाहते हैं, पन्नों का तो इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का होता है। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, तो उनों के पास इतना सिदक भी नहीं आता है, खुशी नहीं आती है। यात्रियों को तो रहता है ना। वो पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करके खाते रहते हैं, तो वो है झूठे पंडे। यात्रियों की बुद्धि में रहता है कि हम दर्शन करें। ये तो ज्ञान नेत्र से दर्शन करने की बात है। वो भक्त लोग भी बहुत अच्छी भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है। वो जानते हैं कि लिंग बर्फ का बना रहता है, बर्फ में तो गर्मी नहीं आती होगी। उनके सामने जाने से ही बर्फ ही जैसे देखने में आती है। इंद्रियां ही शीतल हो जावे तो भावना वाले तो खुश हो जाते हैं। कहते हैं ये तो कुदरत है, कि बर्फ में भी भगवान नजर आता है। जरूर भगवान है, तब तो बर्फ में भी लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है, परंतु वहां भक्ति मार्ग में तो कुछ है नहीं। वो तो हर बात में झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, ये यात्राएं आदि सब झूठी हैं। सच्ची यात्रा तो तुम्हारी अभी हो रही है। मनुष्य समझते हैं कि हमने बहुत धक्के खाए हैं, अब कहां भगवान मिल जावे, परंतु भगवान मिलता ही नहीं है। बाबा ने समझाया, भगवान का चित्र ही निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। बिल्ली का फोटो थोड़ा ही होता है, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है स्टार है। बिंदु को छोटे से छोटा बनाया जा सकता, फोटो कैसे निकलेगा। तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। कई बच्चियां हैं जो मस्तक पर छोटा स्टार भी लगाती है, क्योंकि ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास प्रकृति में है, तो स्टार भी लगाते हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो सच्चा तिलक वो है, राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, क्योंकि वो तो स्थूल राज तिलक मिलता है। आत्मा तो स्टार है, सूक्ष्म है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है, हम आत्माओं को अब रास्ते तो मिलता है। आत्मा समझती है अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रकुटी के बीच में हमेशा स्टार कहते हैं, तो बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, कोई सोने का भी लगाते हैं। सौभाग्य तो सोने का होता है। अभी तो तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, हम आत्मा स्टार हैं और परमपिता परमात्मा भी इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बहुत गुह्य बातें हैं, तुमको ज्ञान अर्थात सोजर मिला है, तुमने परमपिता परमात्मा के रूप को भी सह देखा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। तो कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए, आत्मा छोटी बड़ी नहीं है, जैसे तुम हो वैसे बाप है। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है। ये दिखाने के लिए शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं और शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। हाँ, आत्माओं का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से, क्योंकि एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ा ही हो सकता है। तो इनको ईश्वरीय कुटुंब कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहेंगे। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि मैंने ड्रामा बनाया है, क्योंकि अगर बनाया है तो फिर प्रश्न उठता है कब बनाया। तो इनको कहा ही जाता है कुदरत, कि चक्कर कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उनमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान वर्ल्ड माइटी अथॉरिटी ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। भगवान ही आए सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है सागर के साथ, ये भी समझते हो सागर से नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को तो ये भी याद नहीं रहता है, तुम्हारी बातों को कोई भी नहीं जानते हैं कि ये ज्ञान सागर कैसे आते हैं। और ये ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती हैं, ये ज्ञान की बातें हैं। 24/8/65 की वाणी का तीसरा पेज। झूठी बातें तो मनुष्यों द्वारा बहुत चलती हैं, तो सच्ची बातों का कोई को पता नहीं है। तुम उस सागर और ज्ञान सागर दोनों को जानते हो। अभी तो वो सागर और नदियों भी दुख देती रहती हैं। सागर भी उथल पड़ता है तो कितना नुकसान हो जाता है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन बाप को सभी याद करते हैं, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, वो तो दुखदाई बन जाते हैं। ये सागर कोई दुखदाई थोड़े ही बनते हैं। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ही ये नदियां निकलती हैं। उनके नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है, बल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है, लिंग का नाम क्या रख दिया है, है? शिव। बाबा का नाम तो अविनाशी है, नाम किस आधार पर रखा जाता है, काम के आधार पर नाम रखा जाता है। जरूर कल्याणकारी है, शिव बाबा रचयिता है और उनकी रचना भी है। गॉड इज वन कहा जाता है और रचना भी एक ही है और दोनों अनादि हैं। कौन है गॉड इज वन और कौन उनकी रचना है, कृष्ण को आदि कहेंगे या अनादि कहेंगे? सतयुग में आदि होता है कृष्ण, पहला पत्ता बन के आता है। तो गॉड इज वन और उनकी रचना भी वन, वो रचना कौन है? जो गॉड इज वन वो भी अनादि और रचना भी अनादि, कौन है गाड? है प्रजापिता। प्रजापिता तो संगम में ही होता है, शिव बापा नादि है उनकी रचना है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है या नहीं है? उनमें भी पहली रचना कौन है? ब्रह्मा तो नीचे बैठा है। ब्रह्मा सूक्ष्म तन में नीचे बैठा है या ऊपर बैठा है? तो ऊपर की स्टेज में कौन है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो कैसे अनादि हैं? वो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में त्योहार आदि कुछ नहीं होते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। तो इस समय जो पाठ चल रहा है पतित से पावन बनने का, इनके जो त्योहार बनेंगे वो भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग था फिर स्वर्ग आवेगा, परंतु इस समय तो कलयुग है, नरक है, परंतु इनकी आयु का कोई कॉपी पता नहीं है। तो घोर अंधियारा ये है, कल्प की आयु का किसको भी पता नहीं है। कहते भी ये ड्रामा है जो फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कोसी भी समझते नहीं। इसलिए कहा जाता है घोर अंधियारे में है, कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सतयुग की आयु शुरू होगी। बाकी भी विद्वान लोग तो साफ शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के, ये बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ये कहते हैं इन वेदों शास्त्रों जप तप आदि से तुमको कब भी जीवन मुक्ति मुक्ति नहीं मिल सकती। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा को शास्त्र दे दिए हैं। कौन से ब्रह्मा को शास्त्र दे दिए हैं? है? अरे यादगार है ना चित्र वगैरह, तो कौन से ब्रह्मा को शास्त्र दे दिए हैं? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, फिर शास्त्र कौन से ब्रह्मा को दे दिए हैं जो वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं? है? कौन सा ब्रह्मा है जो वेदों शास्त्रों का सार समझाता है? प्रजापिता ब्रह्मा है, वो भी शास्त्र सभी थोड़े ही हाथ में पकड़ सकते हैं। सब शास्त्र हाथ में पकड़ते हैं क्या? बस ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही बैठ सुनाते हैं, कौन से सुनाते हैं? ब्रह्मा के हाथ में कौन से शास्त्र दिए हुए हैं? चार हाथ हैं, चारों में शास्त्र दिए हुए हैं, कौन से हैं? वेद है ना, कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। तो भक्ति मार्ग वाले जानते हैं कि ये सब शास्त्र तो भक्ति मार्ग के ही हैं और ये तो पढ़ते ही आए हैं, कब से पढ़ते आए जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं अनादि हैं। कहते हैं वेद व्यास ने शास्त्र रचे, तो वेदों को वो लोग बहुत ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता के पत्ते हैं, अर्थात रचना है। तो बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि सब फिर वो ही बनेंगे। और वो ही नाम रखेंगे। किसने बनाया ये भी जानने की कोई दरकार नहीं है। जिसने बनाए हैं वो भी झूठे शास्त्र बनावेंगे। समझते हैं क्राइस्ट का बाइबल बाद में लिखवाया गया, ऐसे नहीं कहेंगे बाइबल शुरू में ही बना है। नहीं, ये तो सब भक्ति मार्ग में बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म के जब बहुत हो गए तब चर्च बने, बहुत भक्त बने तब चर्च में जावे। तुम जब भक्ति मार्ग में जाते हो फिर ढेर मंदिर बनाते हो। अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर हम पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनावेंगे, राजा रानी मंदिर बनावेंगे तो प्रजा भी बनावेगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लग पड़ते हैं। कोई बनाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, पैसे तो बहुत रहते हैं ना, घर घर में मंदिर बना सकते हैं, एक एक के घर मंदिर हो सकता है। महाराजा ने कोई फैशन निकाला तो झट मंदिरों में पूजा शुरू हो जाती है। तुम ही पूजे फिर तुम ही पुजारी बनेंगे, और वो भी नंबरवार बनेंगे। तुम जो पूजी बनते हो वो ही फिर पुजारी बन लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर बनावेंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राम सीता का मंदिर नहीं बन सकता है, मंदिर तो बाद में बनते हैं ना, भक्ति मार्ग में जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की प्रॉपर्टी है, वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भी भोगते हैं। नहीं तो ये राजा ही कहां से आई, ये राजाई किसने स्थापन की, तो वो प्रॉपर्टी चली आती है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो फिर छोटी होती जाती है, छोटी होते होते फिर आखिरी कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि आपस में ही बांटते रहते हैं। 24:8-65 की वाणी का चौथा पेज। ये मुसलमान आदि लोग तो बाद में आते हैं। तो बच्चों को समझ में आ गया है कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना परमपिता परकाम परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पार्ट। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुभ भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करता है। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाई दिया, परंतु वो सारा ज्ञान सब तो नहीं सुनेंगे, जो कल पहले वाले हैं वो ही निकलते रहेंगे। तुम पंडित लोग आगे आए तो आगे आगे वर्ष आए, फिर अब आए हो तो कुछ कुछ नहीं लाए हो, कुछ छोड़कर भी आए हो। जो आजन लाने लायक बने हैं दूसरी बार फिर नए नए को लावेंगे। वृद्धि तो होती रहती है ना, सूर्यवंशी डायनेस्टी चंद्रवंशी डायनेस्टी सब यहाँ बननी है। जितना जो अच्छी सर्विस करेंगे वो ऊंच पद पावेंगे। एक दो को आप समान बनाते वृद्धि को पाना होता है, जितना आप समान बनावेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। तो अपनी अपनी दिल से पूछना होता है कितने पर रहम करके और उनको मार्ग बताया, वो फिर इस मार्ग पर चल पड़ा। अगर खुद नहीं चल सकते हैं तो औरों के लिए हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी बना देंगे। ऐसे भी होते हैं, कहेंगे हम धन से सेवा कर सकते हैं, मन सा वाचा सेवा नहीं कर सकते हैं, इससे भी बहुतों का फायदा होगा, तो इसका आजूरा मिल जाएगा। ऐसे ऐसे फिर प्रजा में भी आ जाएंगे, कहेंगे हम नहीं कर सकते हैं, हमको फुर्सत नहीं है, बाकी हाँ हम मदद कर सकते हैं। तो अच्छा खोलो सेंटर, युक्तियां रची जाती हैं, बड़ा मकान आदि भी नहीं बनाओ, किराए पर ले लो, मकान तो फिर भी एक हो जाएगा ना। ऐसे खर्चा नहीं करो, लाख डेढ़ लाख से ब्रांचेस निकालो, सीमित पर चलो, तो बहुत सेंटर्स वृद्धि को पाते जाएंगे। घर घर में हॉस्पिटल होनी चाहिए, बेचारे बहुत बीमार हैं, बहुत रोगी हैं, परंतु इन बातों का कोई को पता नहीं है। इस समय सारी दुनिया रोगी है, ये साधु संत आदि सब रोगी हैं। तो कितनी हॉस्पिटल होनी चाहिए, मकान बनाते ही बनाते अगर मर जाए तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। ये शिव बाबा भी किराए पर मकान लेते हैं, रथ लेते हैं ना, तुम भी किराए पर लेकर के सेंटर खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा, बहुतों की आशीर्वाद तुमको मिलेगी। तो बाप कितना राज बैठ समझाते हैं, बाप के मददगार बनो, वो भी समझाते रहते हैं कि कैसे मददगार बनो। मनुष्यों के पास जो इतना धन है सब व्यर्थ है, बाप को तो इतनी दरकार ही नहीं है, बाप तो करण करावन हर है ना, इनसे भी कराया है, सबसे कराते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं राय देता हूं और आता ही हूं राय देने के लिए, ऐसी राय देता हूं जो तुम एकदम धनवान बन जाते हो। ये गॉडफादरली पढ़ाई है, इसको कहेंगे सोर्स ऑफ इनकम। 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, पढ़ाने वाला भगवान है, उनके साथ योग लगाना है, जिनको कहा जाता है ज्ञान का सागर, योगेश्वर है, ईश्वर अपने साथ योग सिखलाते हैं और ज्ञान भी देते हैं, बाकी श्री को योगेश्वर नहीं कहा जाता है। योग से लाने वाला ईश्वर है, श्री कृष्ण नहीं है, वो ज्ञान का सागर भी है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मम्मा चली गई, ये भी एक तूफान आ गया, अच्छे अच्छे झाड़ों को गिराई दिया, संशय बुद्धि हुए, फिर बाबा की मुरली ने, ज्ञान संजनी बूटे ने बहुतों को खड़ा कर दिया, कोई तो अभी तक भी झुकते रहते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मां में कम याद करो, मम्मा को भी याद न करो, नंगे आए थे, अशरीरी बनो, अशरीर बाप को याद करो, ये मंजिल है। फिर भी पक्का बनने के लिए पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिकंदे बच्चों प्रति याद प्यार। ओम शांति। सतयुग के जो 8 लक्ष्मी नारायण हैं, उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे, वो देवी देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण, लेकिन चढ़ती कला के नहीं हैं। कैसी कला के हैं? उतरती कला के देवी देवता हैं, तो उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे।
बाबा, प्रजा पिता को बकरे का मुंह दिखाते हैं, तो कब की बात है, उसकी शूटिंग कैसे?
हर आत्मा पहले पहले आदि में सतो प्रधान होती है और अंत में तमो प्रधान होती है। तो प्रजापिता वाली आत्मा भी अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और आदि में सबसे जास्ती सतो प्रधान होनी चाहिए। तो जो अंत की निशानी है वो बकरे की दाढ़ी दिखाई गई है। बकरा क्या करता है, कैसी आवाज निकलता है, मैं इतना देहवान बढ़ जाता है। वास्तव में मैं की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आत्माएं रंगमंच के पार्टधारी हैं, और रंगमंच के जो पार्टधारी होते हैं वो किसके इशारे पर नाचते हैं? हैं? डायरेक्टर के इशारे पर नाचते हैं। जैसे कठपुतलियों का खेल होता है, सारी कठपुतलियों का लिंक कहाँ जड़ा हुआ है? हैं? कोई एक है ऊपर जो हाथ चला रहा है, उंगलियां चला रहा है, उन सूत्रों से वो बंधी हुई है। तो ये 10 सूत्र हैं, 10 धर्मों के मुखिया हैं। उन मुखियों में बीज रूप आत्मा भी है, सूक्ष्म आत्मा भी है, और आधार मूर्त आत्मा भी है जो शरीर धारण करती है। तीनों के संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं संगम में, तो 10 उंगलियां हैं, सारे संसार को नचाती हैं। तो सारे संसार की आत्माएं क्या हो गई है? कठपुतलियां हो गई। सब कठबुद्धि है, उन कठबुद्धि कठपुतलियों को नचाने वाली 10 हैं, और 10 को भी नचाने वाला कोई है या नहीं है? है? एक शिव है। तो कोई अहंकार धारण करे कि मैं ही मुखिया हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, ये मिथ्या अहंकार है या सत्य है? मिथ्या अहंकार है। लेकिन देहबान जब बहुत बढ़ जाता है तब हर आत्मा का यही हाल होता है। कोई आत्मा में जल्दी देहवान बढ़ जाता है, और कोई में है, बहुत लंबे टाइम के बाद देह भान पड़ता है। जैसे इस्लाम धर्म की कोई बुजरूप आत्मा है, तो 84 जन्म लेने वाली है या कम जन्म लेने वाली है, है? बीज रूप 84 जन्म लेने वाली है। सत्युग त्रेता में आएगी कि नहीं आएगी? सत्युग त्रेता में आएगी, लेकिन इस्लाम धर्म की होने के कारण त्रेता के अंत तक आते आते सबसे जास्ती तम प्रधान बन जाती है, और उससे भी ज्यादा तम प्रधान वो आत्मा बनती है जो उसका आधार है, जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है। तो देखो 21 जन्मों के अंत में ही तमोप्रधान बन गई सबसे जास्ती। जो सबसे जास्ती तमोप्रधान होते हैं उनमें से ऊपर वाली आत्मा आकर के प्रवेश करती है कि सतोप्रधान में प्रवेश करेगी, तो वो 21 जन्मों में तम प्रधान बन गई, क्योंकि इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है। छिलका मोटा होगा या पतला होगा? मोटा छिलका होता है। द्वापर में कलयुग में विकारों का छिलका बहुत चढ़ता है, विविचार का, और उसके मुकाबले सूर्यवंशी की जो बीज रूप आत्मा होगी, तो 21 जन्मों के बाद ही तमो प्रधान बनेगी या अंत में जाके तमो प्रधान बनेगी? हैं? अंत में जाके तमो प्रधान बनेगी। तो उन सूर्यवंशियों में भी पहला नंबर कौन है? प्रजापिता। वो सबसे बाद में जाके तमो प्रधान बनेगा या बीच में पहले बनेगा? सबसे बाद में जाके तमोप्रधान बने, और सबसे ज्यादा तमोप्रधान बनेगा या कम बनेगा? सबसे ज्यादा बनेगा। इसलिए बोल दिया कि राम ही रावण बनता है। ऐसे तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है। जब शिव आते हैं तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय होती है, या कोई राम संप्रदाय भी होता है? सारी दुनिया रावण संप्रदाय। नंबर वन है। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन मुरली में कहा है कि शिव बाबा और ब्रह्मा की मत पर चलना है। एक की मत पर चलना है या दो की मत पर चलना है? है? नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है, उसमें सब प्रवेश है या नहीं है? तो प्रजापिता ब्रह्मा और शिव दो अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? तो मत एक ही होगी या अलग अलग मत होगी? दोनों की मत में अंतर पड़ेगा या एक ही मत होगी?
आत्मा दो पर्सनालिटी एक ही है।
हाँ, तो मत जो मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। जैसे कि दादा लेकर आज ब्रह्मा में शिव प्रवेश करते थे तो मत बदल जाती थी या शिव की ही मत होती थी? है? बदल जाती थी। मुरली में बोला शादी बर्बादी, और फिर गंधर्व विवाह ढेरों के करा दिए। मुरली में बोला प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, मकान नहीं बनाना है। ब्रह्मा से पूछा गया अलग से, तो ब्रह्मा की आत्मा द्रवित होती, बच्चा बहुत परेशान है, बच्चे का परिवार बहुत परेशान है। अच्छा बच्चे, बाबा तो चाहते हैं कोई अच्छा बच्चा निकले जो अपने घर को गीता पाठशाला बनाए, तो परमिशन दे देते हैं। फिर वो गीता पाठशाला टिकती है कि उड़ जाती है? उड़ जाती है। वो गंधर्वी विवाह टिके या खलास हो गए? खलास हो गए। शिव की मत पर अंत में गंधर्व विवाह होंगे, जो रुद्रमाला के मण के और विजयमाला के मणकों को स्वभाव संस्कार के आधार पर दंपति के रूप में संसार में प्रत्यक्ष कर दिया जाएगा। वो गंधर्व विवाह सुलभ अंत तक सफल होंगे। अभी तक के जो बनाए हुए गंधर्व विवाह हैं वो कोई भी सफल होने वाले दिखाई नहीं देते।
शंकर का टकराव खत्म होगा?
होता ही नहीं है शिव बाबा शंकर का टकराव, पता कैसे चलेगा? हाँ, ब्रह्मा और शंकर का टकराव होता है।
तो टकराव होने के बाद विष्णु बनता है या?
टकराव खत्म हो तब विष्णु बने,
और विष्णु बनने के बाद फिर वो तम प्रधान कैसे बन सकता है? प्रजापिता,
प्रजापिता तम प्रधान, वो तो पार्ट बजाता है। शिव जब तक इस सृष्टि पर है तब तक ही शूटिंग होती है, 2037 तक जब तक 100 वर्ष पूरा हो तब शूटिंग होगी। शूटिंग कब तक होगी है? अंत तक शूटिंग होती रहेगी। तुम बच्चे अंत तक शिव बाप से वर्षा लेती रहेंगे, आधे पापात्मा बचेंगे आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पापात्मा पापात्माओं की लिस्ट में कौन सी माला होगी है? रुद्र माला होगी। तो जो पापात्माओं की लिस्ट में होंगी वो अंत तक अपना वर्षा लेंगे या नहीं लेंगे? और जब वर्षा लेंगे तो उनको सेवा के फील्ड में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? विनाशी धर्मकंडों के बीच में भी जाना पड़ेगा। वहां रह करके भी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, एडवांस पार्टी का कार्य क्या है? दुनिया में जो एडवांस पार्टी होती है सेना में, वो क्या करती है? हैं? पहले पहले जाकर के फील्ड तैयार करती है, फील्ड की रूपरेखा बनाती है। तो एडवांस पार्टी का भी यही कार्य है, नई दुनिया की रूपरेखा तैयार कर देना। जैसे इंजीनियर होता है मकान बनाया जाता है तो वर्कर्स पहले आते हैं काम करने के लिए, तो इंजीनियर पहले प्लानिंग बनाता है। इंजीनियर पहले प्लानिंग बनाता है। तो ऐसे ये इंजीनियर्स हैं जो नई दुनिया की प्लानिंग करते हैं, नई दुनिया का नक्शा बनाते हैं, यही कार्य है इनका। आबू में तो बीके वालों का राज्य चलता है, तो ऐसा कब तक चलेगा?
2000 तक चलेगा,
उसके बाद नहीं चलेगा है? हाँ, एडवांस पार्टी की क्षिप्र गति हो जाएगी। अभी झाड़ छोटा है, छोटे झाड़ को तूफान ज्यादा लगते हैं, इसलिए पत्ते झड़ जाते हैं। जब झाड़ बड़ा हो जाएगा तो तेजी से वृद्धि होने लग पड़ेगी। इसलिए बोला है जल्दी जल्दी सेंटर्स का घेराव डालो। जब सेंटर्स का घेराव बढ़ जाएगा, तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी, तो वो पार्टी ठंडी हो जाएगी। अभी भी ठंडे होने लगे हैं कि नहीं होने लगे हैं? पहले के मुकाबले ठंडे होने लगे। हाँ,